नमस्कार भारत 30 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका आने से रोकने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय हलकों में निंदा।
The policy is obviously absurd. It's the product of an immature administration. It can't possibly have had proper.
पूर्वांचल से होगी एक चुनावी रिपोर्ट और देखेंगे अमृतसर का भी सियासी रंग। खेल और खिलाड़ी में चर्चा होगी रॉजर फेडरर की ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल पर जीत की।
Ladies and gentlemen, the 2017 champion of the Australian Open, Roger Federer.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अपूर्व कृष्ण से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुख्यतः मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका आने पर अस्थायी रोक लगाने के अपने फैसले पर बढ़ते विरोध के बीच इस कदम का बचाव किया है। उन्होंने एक लिखित बयान जारी कर मीडिया पर गलत खबर देने का आरोप लगाया कि इस पाबंदी का मतलब मुसलमानों पर पाबंदी लगाना है। उन्होंने कहा कि 90 दिनों के भीतर इन देशों के लोगों के लिए फिर से वीजा जारी किए जाएंगे। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के पाबंदी लगाने के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जारिफ ने इसे चरमपंथियों और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने भी अपने मंत्रियों को अमरीकी मंत्रियों से संपर्क कर चिंता जाहिर करने के लिए कहा है। जर्मन सरकार की एक प्रवक्ता ने कहा है कि चांसलर एंगेला मर्केल का मानना है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में किसी खास जगह या मत के लोगों को संदेह के दायरे में रखना सही नहीं है। अमेरिका के भीतर भी हजारों लोगों ने ट्रंप के आदेश के विरोध में हवाई अड्डों और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन किए हैं। बॉस्टन, न्यूयॉर्क और व्हाइट हाउस के पास लोगों ने जुलूस निकाले हैं। अमेरिका के 16 राज्यों के मुख्य कानूनी सलाहकारों ने इन पाबंदियों को असंवैधानिक, अमेरिका विरोधी और गैरकानूनी बताया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी कर भरोसा जताया है कि इस आदेश को अदालतें निरस्त कर देंगी। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद हकीम जेफरी ने इस आदेश को शर्मनाक बताया है।
This is absolutely an overly broad, unnecessary, unconscionable approach.
ये एक अनावश्यक और असंवैधानिक नीति है जो भड़केगी और दुनिया भर में तनाव को हवा देगी। डेमोक्रेट सांसद हकीम जेफरी के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति ने पद ग्रहण करने के बाद पहली बार अमरीकी सेना की विशेष टुकड़ी को हमला करने की मंजूरी दी है। अमरीकी सेना का कहना है कि यमन में अलकायदा के मुख्यालयों पर हमले की कार्रवाई के दौरान उनका एक कमांडो मारा गया और 3 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इस हमले में 14 चरमपंथियों को मार डाला गया, मगर स्थानीय लोग ये संख्या ज्यादा बता रहे हैं और उनका कहना है कि कम से कम 12 आम नागरिक भी हमले में मारे गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रंप के जिहादी गुटों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने के संकेत के तौर पर देखा जाएगा। फ्रांस में एक पूर्व शिक्षा मंत्री बेनवा हैमॉन ने सोशलिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए चुनाव में जीत हासिल की है। सख्त वामपंथी विचारधारा वाले नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी मैनुएल वॉल्स को बड़ी आसानी से हराया, जिन्होंने मतगणना पूरी होने से पहले ही हार स्वीकार कर ली। मैनुएल वॉल्स ने प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांस के श्रम कानूनों को उदार बनाने में भूमिका निभाई थी। पेरिस स्थित एक बीबीसी संवाददाता का कहना है कि हैमॉन की जीत देश के पूर्व अर्थमंत्री इमैनुएल मैक्रॉन के लिए वरदान साबित हो सकती है, जिन्होंने पिछले साल एक मध्य मार्गी विकल्प देने के लिए अपनी पार्टी बनाई थी। म्यांमार में एक जाने माने मुस्लिम वकील और आंग सान सूची की सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कानूनी सलाहकार की यांगोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोनी की बेटी यिन न्यू खाइंग इस हमले के समय अपने पिता के साथ थीं। मैंने कुछ फटने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा शायद गाड़ी का टायर फट गया है। मेरे सामने एक गाड़ी थी जिसे मुझे दिखा नहीं। फिर जब मैंने आगे देखा तो पाया कि मेरे पिता नीचे गिरे हैं। मैं दौड़ कर गई और देखा मेरे पिता हिल नहीं रहे हैं। म्यांमार के मुस्लिम वकील की बेटी यिन न्यू खाइंग के शब्द। संवाददाताओं का कहना है कि म्यांमार में राजनीतिक हत्याएं बहुत कम ही हुआ करती हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शरणार्थियों और सात मुख्यतः मुस्लिम देशों के लोगों को अमरीका आने से रोकने के अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। अमरीका के भीतर भी उनके इस फैसले को लेकर कई हलकों में चिंता जताई जा रही है। वहां राजनेताओं से लेकर अदालत तक में इस पाबंदी के विरोध में स्वर सुनाई दिए हैं। वहां बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मगर ट्रंप प्रशासन अपने फैसले पर अभी भी मजबूती से टिका हुआ है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अपूर्व कृष्ण से।
डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय नेता ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के दफ्तर ने कहा है कि उन्होंने अपने गृह और विदेश मंत्रियों को अपने अमरीकी समकक्षों से संपर्क कर अपनी चिंता जताने का निर्देश दिया है। ब्रिटेन में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष कंजर्वेटिव सांसद क्रिस्पिन ब्लंट ने इस पाबंदी की आलोचना की है। ये स्पष्ट रूप से एक बकवास नीति है। ये एक अपरिपक्व प्रशासन का काम है। इस पर सोचने के लिए किसी को भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कि इसमें क्या गड़बड़ियां हैं। हमें अमरीकी लोगों को इस अत्यंत बेवकूफ नीति की अव्यवहारिकता को ठीक करने का मौका देना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष क्रिस्पिन ब्लंट के शब्द। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्कल की प्रवक्ता स्टेफन ज़ाइबर्ट ने कहा है कि वे नहीं मानती कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी एक जगह या किसी एक मान्यता के लोगों पर संदेह करने को जायज ठहराया जा सकता है। फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री बर्नार्ड कुचनर ने कहा है कि ट्रंप के मुस्लिम विरोधी रवैये का समर्थन करना नामुमकिन है। राष्ट्रपति ट्रंप के आतंकवादी विरोधी होने की बात समझ में आती है, मगर लोगों के अमरीकी एयरपोर्ट पहुंचने पर पाबंदी लगाना जैसा कदम मेरे ख्याल से काफी खतरनाक है। फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री बर्नार्ड कुचनर के शब्द। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा है कि ये बिना सोचे समझे लिया गया फैसला लगता है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और मुश्किल हो जाएगा।
In some areas, give ISIS some more propaganda.
मुझे लगता है कि इससे आईसिस को प्रोपेगेंडा का मौका मिल सकता है। अगर हम चरमपंथियों और आईसिस के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मोसुल में लड़ाई चल रही है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आईसिस को मोसुल से खदेड़ने के बीच कोई अड़चन आए। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन के शब्द। मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर अपने फैसले का बचाव किया है। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ राइन स्प्रीबस ने कहा है कि इससे कोई अफरा तफरी नहीं मची है।
The fact of the matter is 325,000 people from foreign countries came into the United States yesterday and 109 people.
वास्तविकता यह है कि कल विदेशों से 325,000 लोग अमेरिका आए। इनमें पूछताछ के लिए 109 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें अधिकतर को छोड़ दिया गया। मगर यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस देश में नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ राइन स्प्रीबस के शब्द। मगर अमरीका के फैसले पर अमरीका के बाहर आलोचना बढ़ती ही जा रही है। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल गेथ ने इसे अस्वीकार्य बताया है। वहीं ईरान और इराक ने इसके जवाब में अमरीकी नागरिकों के अपने देश में आने पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है।
ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब कुछ खबरें भारत से। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। हालांकि राजनीतिक रूप से यह पहले काफी समृद्ध रहा है, बावजूद इसके आर्थिक रूप से यह काफी पिछड़ा हुआ है। देवरिया और कुशीनगर में एक समय में कई चीनी मिलें हुआ करती थीं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरी जगहों पर रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माने जाने वाली जगह कुशीनगर पहुंचे और वहां कुछ लोगों से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। सुनिए आम लोगों से उनकी ये बातचीत।
मैं इस समय कुशीनगर में हूं और गोरखपुर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और दिखाई भी पड़ रहा है। ज्यादातर यहाँ आने जाने वाले विदेशी लोग हैं और कुशीनगर में बौद्ध स्तूप है। ये बताएं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दा जिसको कहा जाता है वो क्या है?
मुख्य मुद्दा बेरोजगारी की मुद्दा है। चीनी मिलें जो बंद हो गई उसके वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है और बहुत दिनों से कई बार सर्वे हुआ कि रेल लाइन आ जाए, लेकिन
रेलवे लाइन का मुद्दा है, रेलवे मंत्री भी इसी इलाके से पूर्वांचल से ही आते हैं, तो क्या वो नहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं?
एक महीने पहले प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उन्होंने कहा तो था रेलवे लाइन देंगे, रेल मंत्री का प्रोग्राम भी लगा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए। और पिछले 20 सालों से मुद्दा चल रहा है रेलवे का। जिस तरह का इंटरनेशनल प्लेस है कुशीनगर, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फेम है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है।
अच्छा, हाईवे जो है, ये हाईवे तो ठीक है, अंदर की सड़कों की क्या स्थिति है?
अंदर की सड़कों का यहाँ तो ठीक हो गया है, यहाँ से देवरिया तक या पड़ोना तक, बाकी अंदर और तो खराबी है ही है।
जो चीनी मिलों की बात हो रही है कि चीनी मिलें बंद हो गई, क्यों हो गई बंद?
चीनी मिल किसानों का पैसा समय से दे नहीं पाई, किसान गन्ना अपना बंद कर दिए बोना। सरदार नगर तो एकदम घोटाला में है, ढांढा चीनी मिल भी वही काम कर रही है और 5-7 साल से बकाया इन पर चल रहा है।
ये जी आए थे पिछली बार लोकसभा में तो वादा करके गए थे पड़ौना चीनी मिल को, लेकिन इस बार वो भूल गए हैं। फिर रेलवे लाइन की भी व्यवस्था में थे, ये पूरा प्रचार हुआ था लेकिन वो भी फेल हो गया। वादा तो उनका फेल है चीनी मिल पे, केवल लोगों को लुभावना जानते हैं और कुछ नहीं है। नोटबंदी में हम लोगों ने 2 महीना इतना कष्ट सहया, कौन राजनेता पकड़ा गया।
अच्छा, ये इन्होंने नोटबंदी की चर्चा की, बड़ा अहम मुद्दा है, उसको लेकर के क्या?
मोदी जी ने काम तो अच्छा किया लेकिन उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया, इससे लोगों को बहुत परेशानी तो हुई।
आधा सुपर लोग छोड़ दिए हैं गन्ना बोना, क्या करें, समय से पैसा नहीं मिलता है, समय से बीज नहीं मिलता है, कुछ नहीं है बाकी यहाँ अपना।
जो मिल वाले हैं वो कहते हैं कि सरकार है वो किसानों के गन्ने का रेट बढ़ाती जाती है लेकिन चीनी का रेट जो है वो नहीं बढ़ता है उस हिसाब से।
ये तो उनका, ये तो उनका मामला है ना, सरकार और चीनी मिले समझे, किसान को तो उसके गन्ने का पैसा चाहिए, वो गन्ना गिरा रहा है, आज उसको पैसा मिलेगा 6 महीने बाद तो रोज खाएगा।
ये चीनी मिल वालों की जो मजबूरी है वो जायज है कि नहीं?
जायज क्यों नहीं है, जब सरकार उसका इंतजाम कर नहीं रही है, कम रेट की चीनी बाहर के मंगाएगी, यहाँ के चीनी डंप रहेगा तो क्या करेगा मिल मालिक, उसका नुकसान होगा तो देगा कैसे?
लेकिन वो नीति निर्धारित किसान नहीं करेगा, वो तो नीति निर्धारण सरकार और मिले करेंगे।
यानी कुल मिला के सरकार की नीति,
बिल्कुल बिल्कुल, नीतियाँ तो हम बनाते हैं, नीतियाँ तो सरकार बनाएंगी।
कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जिससे कि हमारे जो नौजवान हैं जो रोजगार है वो कुछ काम
पूरे अपने देश में नहीं है। कुशीनगर की तो बातें छोड़ दीजिए,
जनप्रतिनिधि जो आपके एमपी एमएलए हैं उनसे आप लोगों ने कभी इस तरह की मांग की?
सर मांग तो बहुत होती है लेकिन पूरा होने का कोई नाम लेता है?
यहाँ वो क्या कर सकते हैं एमएलए और एमपी,
तो एमपी एमएलए कर क्यों नहीं सकते? आप जिताते तो इसीलिए
जिता रहे हैं जरूर, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं।
टूरिज्म का जितना बड़ा हब है कुशीनगर, लेकिन उस लेवल के जब हम उनको सुविधाएं देंगे तब तो और इंक्रीज करेगा।
यहाँ रोजगार तो बढ़ सकता है, कोई टेक्निकल कॉलेज भी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, इसकी वजह से भी बेरोजगारी हुई है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए।
कुशीनगर के मतदाताओं से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की अमृतसर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने वन लाइनर्स यानी जुमलों के लिए जाने वाले सिद्धू ने जब कुछ महीनों पहले भाजपा छोड़ी थी तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे, इसे लेकर अटकलें लगती रही थी, लेकिन आखिरकार सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन अमृतसर में विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे सिद्धू क्या कांग्रेस की टीम का स्कोर बढ़ा पाएंगे? क्या कहता है अमृतसर में चुनावी माहौल, जानते हैं पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट में।
पंजाब विधानसभा चुनाव में जो सीट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है उसमें अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र भी है। इसके चर्चा में आने की एक वजह है वो है नवजोत सिंह सिद्धू का यहाँ से चुनाव लड़ना। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पार्टी ने उन्हें अमृतसर की ईस्ट विधानसभा सीट से टिकट दी है। यहां से उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू विधायक थी। इसमें से कोई दो राय नहीं कि पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा नाम है, लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आए सिद्धू के राजनीतिक भाग्य का फैसला अमृतसर सीट के मतदाता करेंगे। सिद्धू को कांग्रेस ने एक स्टार प्रचारक की तरह उतारा है और उनकी पत्नी उनके लिए यहां से प्रचार कर रही है। पंजाब की राजनीति में अपनी वापसी पर सिद्धू अपने जाने माने अंदाज में यूं बयान करते हैं,
गुरुआं पीरां दी इस पवित्र धरती ते सच हक ते धर्म दी स्थापना करनी है, दुष्टा ना विनाश करना है, ते उन्हां दा गलामा फड़ के झंझोड़ के उन्हूं कहना साडा हक पंजाब दा हक इत्थे रख, गल खा लड़ाई पंजाब दी है, जिताउणा पंजाब नूं है, हर पंजाबी नूं है, ते पंजाबीयत नूं है, आपसी भाईचारे नूं है, एका करना है, कांग्रेस कठी करनी है, जे कांग्रेस कठी होगी किसुन बणगी समझ लो जाओ।
अमृतसर ईस्ट के मतदाता सिद्धू को लेकर क्या मानते हैं, इस पर अमृतसर के रहने वाले रणदीप सिंह कहते हैं,
ऐसा है सबसे पहले तो जो भी इनकी जो बात कर रहे हैं सर वो सरासर झूठ है, बिकॉज मैं इनका वोटर हूँ, मैंने इनको वोट डाली थी लास्ट टाइम, ठीक है, और हमारा कोई भी काम हो उनके कोठी को मैं दो बार गया, मेरे ब्रदर का कोई काम था, मैंने बोला कि मैम ये काम है आप कॉल कर दीजिए, मेरे ब्रदर का ये काम स्टडी का हो जाएगा, मतलब कि जो भी इन्होंने किया सरासर झूठ है। मेरे ब्रदर के एग्जाम की जो फाइल थी वो नहीं दे रहे थे, वो फाइल क्लियर कर देते मेरे ब्रदर का एक साल बच जाता, ये मेरा काम इन्होंने नहीं किया, और भी बहुत से काम है लोगों के ये करते नहीं है, काफी लोग वहां खड़े थे अभी राइट नो, अभी फिर मेरे मोहल्ले में आए हैं, जब भी मेरे मोहल्ले में आए मैंने तो गेट कर लिया, मैंने तो उनसे बात ही नहीं की।
नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा नहीं करने वालों पर उनकी पत्नी नवजोत कौर का कहना है कि सिद्धू जो कहते हैं वो करते हैं। नवजोत कौर का कहना था,
जब इंसान के पास कोई पॉलिटिकली पोस्ट ही नहीं है तो वो इंसान पंजाब के बारे में बात किस लेवल पे कर। बीजेपी ने नवजोत सिद्धू को पंजाब से 4 साल से दूर किया हुआ है और कोई पॉलिटिकल पोस्ट कोई थी नहीं उनके पास पंजाब में, तो जो सिटिंग इन पंजाब एंड विदाउट बीइंग एमएलए और एमपी और एनी रिप्रेजेंटेटिव जस्ट कांट जस्ट यू नो कीप टॉकिंग अबाउट पंजाब।
नवजोत सिंह सिद्धू जब सांसद थे तब उनके सुझावों और कामों में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने अड़चने पैदा की थी। कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में उतारा है। अब इस पिच पर सिद्धू कितना टिक पाते हैं ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे।
अमृतसर की चुनावी फिजा के बारे में बता रहे थे रविंदर सिंह रोबिन।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
ये बीबीसी है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आइए देखते हैं आज के भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को प्रमुख स्थान मिला है। अखबारों की समीक्षा के साथ हैं अपूर्व कृष्ण
जी। आज भी जो समाचार पत्र हैं भारत के उनमें ट्रंप और अमेरिका की खबर छाई हुई है, और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि ट्रंप के आप्रवासियों पर पाबंदी लगाने की सूची में पाकिस्तान का भी नाम शामिल हो सकता है। अखबार के अनुसार व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने ऐसी संभावना जताई है जिससे पहली बार ये पता चलता है कि पाकिस्तान के नाम पर भी विचार हो रहा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राइन्स प्रीवस ने एक टीवी चैनल CBS से कहा है कि अस्थायी पाबंदी की सूची में शामिल देशों की तरह और भी कई देश हो सकते हैं जिनके यहाँ ऐसी ही समस्याएं हैं जैसे पाकिस्तान या दूसरे देश। और हिंदू में एक खबर है कि अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्य में हवाई अड्डे पर एक भारतीय व्यवसायी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अखबार के अनुसार सुरक्षाकर्मियों ने बड़ौदा के इस बिजनेसमैन को आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए एक जेल में भेज दिया है। अखबार के अनुसार ये व्यवसायी एक हफ्ते के लिए अमरीका के बिजनेस दौरे पर था जब हवाई अड्डे पर कथित तौर पर उनकी हवाई सेवा कर्मचारियों से नोकझोंक हो गई, जिसमें उन पर आरोप लगा कि उन्होंने धमकी दी कि उनके बैग में एक बम है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में एक कोशिश की और उसे अगले महीने इंदौर में दक्षिण एशियाई देशों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया, मगर पाकिस्तान ने इस न्योते को ठुकरा दिया है। अखबार ने शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है और लिखा है कि सम्मेलन में पहली बार म्यांमार को भी आमंत्रित किया गया था, मगर समझा जाता है कि उसने भी इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। और इंडियन एक्सप्रेस में खबर ये भी है कि चुनाव आयोग ने रिजर्व बैंक से 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में खड़े प्रत्याशियों के लिए बैंकों से निकासी की साप्ताहिक सीमा को बढ़ाकर 24,000 रुपये से 2,00,000 रुपये करने का आदेश दिया है। अखबार के अनुसार चुनाव आयोग ने इस बारे में पहले आग्रह किया था लेकिन रिजर्व बैंक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर अब चुनाव आयोग ने नाराजगी जताते हुए उससे कहा है कि वो उसके निर्देशों का पालन करे।
बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व कृष्ण आपका। फिल्म पद्मावती को लेकर संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट पर हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान से वसुतुल्ला खान ने ये डायरी भेजी है।
संजय लीला भंसाली मेरे पसंदीदा डायरेक्टरों में हैं। उनके साथ जो हुआ सुन के दुख हुआ, बल्कि पिछले 2 वर्ष से तो ऐसी इतनी खबरें आ रही हैं कि अब तो शायद दुख भी आदि हो चला है। हम लोग तो खैर पहले ही से पक्के हो चुके हैं, आपका क्या होगा जनाबे अली, ये चिंता है। भारत का तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, मगर यहाँ पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त बेचने वाले हर कसाई की दुकान पे एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा पड़ा रहता है। ये पिंजरा इतना भारी होता है कि चुराना भी मुश्किल है। सुबह सुबह मुर्गियों से भरा एक ट्रक आता है और खाली पिंजरा ऊपर तक भर जाता है, और फिर कसाई का हाथ इस पिंजरे में जाता है, आता है, जाता है, आता है। वो अपनी मर्जी की मुर्गी नंगे हाथ से पकड़ के बाहर निकालता है। एक भी मुर्गी उसके हाथ पे सुबह से शाम तक चोंच नहीं मारती, बस डर के कुछ देर के लिए सहम जाती हैं और फिर शायद ये सोच के नॉर्मल हो जाती हैं, हो सकता है हमारी बारी ना आए। लेकिन हर शाम को पिंजरा खाली होता है और सुबह फिर भर जाता है। कुछ लोग बंदी बनने के बावजूद भी विरोध करना पसंद नहीं करते, बल्कि कईयों को तो उल्टा बंदी बनाने वालों से प्यार हो जाता है। पढ़े लिखे लोग इस रवैये को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सिंड्रोम सबसे ज़्यादा हमारे देशों में ही पाया जाता है। फैज़ अहमद फैज़ बहुत ठंडे आदमी थे, पर एक दिन उनसे भी सब्र का दामन छूट गया। हम तो 70 वर्ष से फैज़ साहब की शायरी के असर में जी रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि पड़ोस में बसने वाले लेखक, बुद्धिजीवी, पेंटर्स, पत्रकार, नेता, अभिनेता और नेत्रियाँ और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मौसीकार, खिलाड़ी वगैरह भी फैज़ साहब का स्वाद चखें, और रोज़ किसी ना किसी शक्ल में शायद चख ही रहे हैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़में बस तो कुशाद, के संग व खिश्त मुकैद हैं और सग आज़ाद।
वसतुल्लाह खां, पाकिस्तान से। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खेल उपलब्धि रही ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में रॉजर फेडरर की राफेल नडाल पर 5 सेटों में मिली जीत। उधर भारत ने नागपुर 2020 मैच जीतकर इंग्लैंड के साथ श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर पहुंचा दी है। सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर नजर दौड़ा रहे हैं आदेश गुप्त आज के खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से।
लेडीज एंड जेंटलमैन, द 2017 चैंपियन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन रॉजर फेडरर।
आखिरकार 7 साल बाद साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन को उसका पुराना चैंपियन एक बार फिर मिला, और साल 2010 के चैंपियन रहे स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने कल स्पेन के राफेल नडाल को 3.5 घंटे से अधिक चले फाइनल में 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। ये उनका 5वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, और चैंपियन बनते ही रॉजर फेडरर ने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचकर जैसे खुद अपने आप को ही यकीन दिलाया कि क्या ये वाकई सच है, वो खुशी के मारे कई बार हवा में उछले। दूसरी तरफ स्टेडियम में मौजूद उनके चाहने वाले एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देने में व्यस्त हो गए। फाइनल में फेडरर ने 20 एस लगाए, ये उनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जीत के बाद फेडरर ने विनम्रता से कहा कि टेनिस एक कठिन खेल है जिसमें ड्रॉ नहीं होता, और अगर होता तो मैं राफा के साथ ड्रॉ स्वीकार कर आज की रात यकीनन बेहद खुश होता।
Tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept a draw tonight and share it with Rafa, really.
दूसरी तरफ नडाल केवल 3 एस लगा सके। वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टेनिस के कोर्ट पर ये पुरानी गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेंगी और फाइनल तक का सफर तय करेंगी। अपने जमाने के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लेवर ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। फेडरर को ऑस्ट्रेलियन ओपन में 17वीं और नडाल को 9वीं वरीयता दी गई थी। नडाल ने साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और अब साल 2017 में वो उपविजेता बनकर भी बेहद खुश थे।
Amazing month for me. I really enjoy it a lot. This beautiful country, fantastic people, supporting a lot, all the events.
लेकिन भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के इवान डोडिग ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल में खिताबी जीत हासिल नहीं कर सके। इस जोड़ी को अमेरिका की एबिगेल स्पियर्स और कोलंबिया के युआन सेबेस्टियन की गैर वरीयता हासिल जोड़ी के हाथों 6-2, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने कल नागपुर में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले तो जो रूट जिन्होंने 38 रन बनाए और उसके बाद जोस पटलर को आउट कर भारत को जीत दिला दी। वैसे इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 6 विकेट खोकर 139 रन बना सका। रूट के अलावा बेन स्टोक्स ने भी 38 रन बनाए, आशीष नेहरा ने 28 रन देकर 3 और जसप्रीत बुमराह ने 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को बेंगलोर में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 144 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने केवल 47 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 71 रन बनाए, लेकिन सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान विराट कोहली एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वो 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलते हुए डॉसन को कैच दे बैठे। युवराज सिंह मोइन अली की घूमती गेंदों पर परेशान दिखे, अंततः वो उन्हीं की गेंद पर केवल 4 रन बनाकर LBW हो गए। इसके बाद मनीष पांडे ने 30 रन बनाए, लेकिन मिल्स की गेंद पर बोल्ड होने के बाद बाकी भारतीय बल्लेबाज आया राम गया राम साबित हुए। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 22 रन देकर 3 विकेट झटके। और अब बात बैडमिंटन की। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल शीर्ष वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने गैर वरीयता हासिल इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का को 30 मिनट में 21-13, 21-14 से मात दी। पुरुष एकल वर्ग का खिताब भी भारत के नाम रहा, जहां 8वीं वरीयता हासिल समीर वर्मा ने भारत के ही 9वीं वरीयता हासिल बी साई प्रणीत को 21-19, 21-16 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और सभा की समाप्ति से पहले जिक्र उस घटना का, जिसने आज से 69 वर्ष पूर्व भारत क्या पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की शहादत की। उस घटना को 3 गज की दूरी से देख रहे थे पत्रकार देवदत्त। उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी।
हमने देख लिया था, एक घुटा हुआ सिर वाला और फौजी ने वर्दी पहनी हुई थी, खाकी सी, और बहुत टेंस, मेरे से 3-4 आदमी छोड़ के खड़ा था। तो निकाल करके उसने पिस्तौल मारे, सामने खड़े हो सीधे मारे, हमको समझ भी नहीं अभी क्या कर रहा है, झुका और झुकते ही उसने लगा दिया। तो जब ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे, अकेले लेटा हुआ था, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही, रोलिंग आईज। उसके बाद चल पड़े वो 30 जनवरी मार्ग से पैदल फिर वापस यूनिवर्सिटी गए। हम फिर जब निकले हैं तो हमने बियाबान देखा, दिल्ली की सड़कों पर कोई नहीं, खाली हो गई थी, ढाबे बंद हो गए थे, तब हमको पता लगा कि ये कौन था।
देवदत्त 3 दिन पहले ही उस शहादत के इस प्रत्यक्षदर्शी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी कर 7 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर अस्थायी रोक लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। अमेरिका के भीतर भी हजारों लोगों ने हवाई अड्डों और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन किए हैं। यूक्रेन में पूर्वी इलाके में सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें 4 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में 3 साल पहले लड़ाई छिड़ी थी। और म्यांमार में एक जाने माने मुस्लिम वकील और आंग सान सूची की सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कानूनी सलाहकार की यांगोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।